आज हम बुक दुरूद शरीफ के मसाइल का इंट्रोडक्शन का अगला हिस्सा करेंगे। थोड़ी सी बात करूंगी दुरूद शरीफ के बारे में कि इसके बारे में हमारा क्या तर्ज अमल होना चाहिए और किस तरीके से इसको हम अपनी ज़िंदगियों में लाएं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो दूसरे लोगों के अंदर इतनी मारूफ हो चुकी होती हैं कि हमें उसके बारे में सही चीज़ का बिल्कुल पता भी हो तो हम उसके बारे में सही तरह से नहीं समझ पाते। अल्लाह सुबहाना तआला सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 56 में फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन्नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह तआला नबी पर रहमतें नाजिल फरमाता है और फरिश्ते नबी के लिए दुआ रहमत करते हैं, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो तुम भी नबी पर दुरूद व सलाम भेजो। इस आयत में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ भी निस्बत की गई युसल्लूना की, फिर इसी तरह फरिश्तों के भी दुरूद शरीफ भेजने का तस्करा हुआ और सल्लू के साथ हुक्म के तौर पे मुसलमानों को भी कहा गया कि आप नबी पर दुरूद भेजें। तो पहली चीज़ तो यहाँ से ये पता चलती है कि दुरूद असल में वो चीज़ नहीं है जो हमारे यहाँ मारूफ है इस रंग में कि कुछ कलमात पढ़ने का नाम है दुरूद। अल्लाह ताला भी दुरूद भेजते हैं, फरिश्ते भी भेजते हैं और फिर इंसान भेजें। अगर इस बात को हम यूँ समझ लें कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला भी बैठ के नबी सल्लम पे मुख्तलिफ दुरूद पढ़ते रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ अमूमन मारूफ है दुरूद तंजीना और कुछ इस किस्म के दुरूद पढ़ने के, तो क्या ये बात सही लगती है? दुरुस्त नहीं लगती ना। फरिश्तों का अमल साथ सोचें तो फिर पता चलता है कि फरिश्ते भी अल्लाह के नबी के लिए बैठ के दुरूद की तस्बीहां पढ़ते रहते हैं, हालांकि हकीकत है कि ऐसा नहीं है। तो असल बात क्या है कि लफ्ज़ दुरूद के मुख्तलिफ मानी होते हैं। तो अल्लाह ताला के दुरूद भेजने का क्या मतलब है कि अल्लाह सुबहाना ताला रहमत भेजते हैं। लफ्ज़ दुरूद का एक मानी रहमत भेजना भी होता है और दूसरा जो है वो दुआ मांगना भी होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के बारे में भी हमारी उम्मत में बहुत सारे अफरात और तफरीत हमें दिखते हैं। बाज़ लोग बिल्कुल ही दुरूद का इनकार करते हैं, बाज़ मुख्तलिफ तरीके से दुरूद शरीफ पढ़ कर ये सोचते हैं कि क्या हरज है, हम अल्लाह के नबी सल्लम पे दुरूद ही तो भेज रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि दुरूद तीन किस्म के हो सकते हैं। एक वो दुरूद होते हैं जो मसनून है, जो ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए, जिनको सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की दलील है इस बात में कि इंसान वो दुरूद पढ़े जो अल्लाह के नबी ने अपने साथियों को सिखाए या ख़ुद भी पढ़कर बताए, इसमें तो यकीनन सवाब है और अजर है। दूसरी वो सूरत है कि जो लोगों ने दूसरों के कहने पे पढ़ाए, यानी किसी आलिम ने बना दिया अल्लाह के नबी की मोहब्बत में, अल्लाह के नबी के बारे में कोई दिल में ख्याल आया तो कह दिया, उनकी हैसियत ज़्यादा से ज़्यादा इतनी है जैसे किसी नात की, किसी पोइट्री की। आप किसी से मोहब्बत करते ना तो आप शायरी करते हैं उसके बारे में, और अमूमन जो शायरी होती है उसमें लफाजी बड़ी खूबसूरत होती है, उसमें जुमले बड़े नपे तुले होते हैं, बाज़ ऑफ एग्जेजुरेशन भी होता है। तो इस किस्म के दुरूद अगर आपको कहीं भी मिलते हैं जिसमें शर्त क्या है कि कोई शिर्क नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आप ना तो अल्लाह के नबी का रुतबा बढ़ा रहे हैं और ना घटा रहे हैं, कोई शिर्क नहीं आता, कोई आपको साहिब कुन फयाकून करके नहीं दिखाया जा रहा, तो बस ये पढ़ना ऐसी है जैसे आपने कोई नात पढ़ी है, कोई नज़म पढ़ी है, कोई शेर पढ़ा है, पढ़ते हैं तो पढ़ते रहें। लेकिन आप इसको ये कहकर नहीं पेश कर सकते कि इसके पढ़ने का आपको इतना सवाब है। मसलन जैसे हज़रत हसन का शेर हमने देखा था पिछली नशिस्त में, तो हज़रत हसन का शेर है, उन्होंने अल्लाह के नबी का हुलिया मुबारक पेश किया, आपकी पैदाइश की बात की, हम मोहब्बत से पढ़ते हैं लेकिन हमारा ईमान नहीं है ये कि उसको पढ़ने से हमें सवाब होगा। सवाब की जहाँ चीज़ है ना, ये सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात तक होती है, वो बताता है कि इस चीज़ के करने का सवाब है उसके नहीं है। तो लिहाजा जो लोग इस तरह के दुरूद मुख्तलिफ किताबों में देखते हैं, और खैरत की बात है कि उसमें ज़्यादा दुरूद जो है वो पाकिस्तानी नामों के साथ है, मसलन दुरूद लखी, लखी किसको कहते हैं, लाख को, एक लाख होता है 100,000, लखी लाख से, तो गोया कि ये लखी तो बल्कि शायद उर्दू की बजाय पंजाबी का लफ्ज़ बना ना। फिर इसी तरह आप देखिए दुरूद माही, माही किसको कहते हैं पता है आपको, मछली को कहते हैं। तो वो मछली के साथ उसका कोई ताल्लुक है। फिर दरू तंजीना का एक नाम अमूमन हमारे यहाँ मारूफ है, वो लफ्ज़ निजात से है, ये भी उर्दू का लफ्ज़ है। तो जो ऐसे दरूद आप देखें उनके बारे में बस सिंपल सी बात ये रख लीजिए कि ये एक अच्छी पोइट्री है, अच्छी शायरी है, खूबसूरत बातें किसी के दिल से अल्लाह के नबी के लिए निकली थी, दैट्स इट। उसको आप सवाब की नीयत से नहीं पढ़ सकते, कोई उसके साथ तादाद मुकरर करके पढ़ेंगे तो बिदअत हो जाएगी। और अगर उसको रोज़ दूसरे दुरूद की तरह आप पढ़ रहे हैं इस सोच के साथ कि भाई इसका पढ़ना तो बहुत सवाब की बात है, तो फिर आपके पास दलील होनी चाहिए। तीसरी किस्म के वो दुरूद होते हैं जिसमें शिर्क आ जाता है, यानी हैं तो बनाए हुए इंसानों के लेकिन फिर लफ्ज़ भी शिरकी है, जिसमें बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला की सिफ़ात नबी सल्लम से मुंसलिक की जाती हैं, बल्कि नबी तो क्या, बाज़ लोगों ने तो बुज़ुर्गों के नाम पे जैसे गौसे पाक के नाम का दुरूद बनाया हुआ है या कुछ इस तरह के अब्दुल कादर जिलानी के, तो उसके लिए तो मेरा ख्याल है कि किसी को कुछ कहने और पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसके पढ़ने का क्या हुक्म है। तो ये हल्की सी बात करनी लाजमी थी इसलिए कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, हमारे पास सबसे कीमती चीज़ जो है ना वो वक्त है। अगर हमने उस वक्त को किसी अच्छी बात में नहीं इस्तेमाल किया तो भी हसरत होगी, लेकिन अच्छी की जगह अगर बुरी जगह इस्तेमाल किया तो अफसोस होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने एहसानात हैं आज उम्मत पर कि अगर हम अल्लाह के नबी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए और अपना उनके साथ ताल्लुक़ जोड़ने के लिए वो सारे काम करना शुरू कर दें जिनकी दावत आपने दी, वो दुरूद जो अल्लाह के नबी ने सिखाए हम वो पढ़ें, सुबह शाम की दुआएं पढ़ें जो अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी में थी तो आपने जो सिखाई, तो इंशाल्लाह इसके बाद अगर हम कोई दूसरों की बनाई हुई बातें ना भी कर सकें तो अल्लाह के हुक्म से ठीक होगा। मसला जो बिगड़ा ना हमारे पाकिस्तानी इंडियन कल्चर का, वो कहाँ से बिगड़ा ये भी बताती हूँ। किसी ने खुद मुझे एक वाक्य सुनाया, कहने लगी कि कोई हज से आए और फिर उन्होंने बड़े तपाक से सारे अपने घर वालों को बाद में बच्चों को जमा किया और कहा बैठो मैं कैसेट लेके आया हूँ, वो तो सब बैठ के सुनेंगे। कहती कि घर वाले दुपट्टे लेके ओढ़ के लड़कियाँ बच्चियाँ सारी बैठती थी और वो फिर घर वाले वो कैसेट जैक सीडी जो थी वो चला देते थे, तो सारे बड़े शौक से सुनते थे क्या कि ये अरबी है और अरबी है तो अरबी तो मीन पे सवाब ही है। बाद में एक मौका ऐसा आया कि जिनको अरबी आती थी या जो अरबी कल्चर से वाकिफ थे उन्होंने बताया कि ये तो अरबी के गाने हैं, सिर्फ वो ये सोच के सुन रहे थे कि ये अरबी है तो ये नातें होंगी या ये कुछ और बातें होंगी। ठीक है, तो हर अरबी जो होती है ना वो कुरान और हदीस नहीं होता। हम वो चीज़ें अगर पूरी पढ़ लेना जो अल्लाह के नबी से मिली हैं तो फिर आप बताइए कि उससे बेहतर क्या होगा। फिर एक छोटी सी और बात कहूँगी कि दुरूद पढ़ने से तो बेहतर है कि आप हदीस पढ़ें, आप कहें कि अपने इस रबीउल अव्वल में मुझे छोटी सी कोई किताब ला दो हदीसों की, और मिलती हैं। मैंने खुद जो सबसे पहले हदीस की किताब पढ़ी थी वो नुखबतुल हदीस थी, आज तक वो ज़ुबान पर रटी हुई हैं हदीसें, क्योंकि वो क्लास में पढ़ी याद की और अब वही दरसों में और बातों में मुँह पे आती। 100 हदीसों का छोटी सी किताब में मजमू था नुखबतुल हदीस, इन्नमलामालु बिन्नियात, और इसी तरह जवामिल कलिम के बारे में थी। तो आप कहें कि अल्लाह ताला के नबी से मोहब्बत मुझे इतनी आ गई कि मैं उनके अल्फाज बोलूँगी, क्यों बोलूँगी, एक तो अल्लाह के नबी की मोहब्बत में। अब देखिए कि मैं बच्चे से मोहब्बत होती है तो क्या करते हैं, शाम को बाप घर में है तो क्या सुना रहे होते हैं, आज इसने ये कहा, आज इस बच्चा एक दफ़ा कहता है घर वाले 100 दफ़ा दोहराते हैं उसको, फिर मेहमान आए थोड़ी देर के बाद फिर बच्चे की बातें शुरू हो गई। वो किसी ने कहा कि जिस घर में बच्चा होता है वहाँ गीबत नहीं होती, क्योंकि लोग हर वक्त बच्चे की बातें करते रहते हैं, वक्त ख़त्म हो जाता है। तो जब बच्चे से मोहब्बत है तो हम उसकी बातें बोले जो बिल्कुल मम्मा पापा रोटी चोची, जिसका कोई मकसद भी नहीं। तो आप सोचिए कि अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत की क्या ये दलील नहीं है कि हम उनके बोले हुए लफ्ज़ बोले, कितना प्यार आएगा। फिर दूसरी वजह भी हदीस बयान करने की है कि हम खूबसूरत हो जाएंगे, होना चाहते हैं, कौन नहीं होना चाहता। तो अल्लाह के नबी की दुआ है नदर अल्लाहु, अल्लाह तरोताज़ा रखे, फ्रेश लुकिंग रखे, खूबसूरत कर दे उस शख्स को जिसने मेरी बात को सुना, याद किया और जैसे उसने सुना वैसे बयान कर दिया, कोई कमी बेशी नहीं कोई, कोई ज़्यादती नहीं कही, कुछ नहीं की। तो लिहाजा हदीस पढ़िए, इससे फ़ायदा होगा आपको ज़्यादा। एक इमाम थे इमाम रमादी, जिनके बारे में तारीख़ बगदाद में लिखा है कि जब वो बीमार होते तो फरमाते मुझे हदीस पढ़कर सुनाओ कि इसमें शिफा है। यानी जैसे कुरान में शिफा है तो इनका ख्याल था कि हदीस पढ़ के भी शिफा है। देखिए जिस चीज़ से आपका दिल लग जाता है ना आपको उसी में शिफा आ जाती है। इसी तरह आप देखिए कि एक सहाबी थे अल्लाह के नबी सल्लम के, उबई बिन काब। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक मौके पे कहा कि ऐ काब, अगर तुम अपनी सारी दुआ का वक्त मुझ पर दुरूद भेजने के लिए वक्फ कर दो तो ये तुम्हारी दुनिया और आखिरत के सारे दुखों और गमों के लिए काफ़ी होगा। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। यानी दुआ के साथ भी दुरूद शरीफ लगाना ये भी मसनून है, और बल्कि ज़्यादा वक्त दुरूद ही पढ़े जो अल्लाह के नबी ने बताए हैं तो अल्लाह ताला बिन मांगे भी दे देता है। तो लिहाजा हम वो काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला जिसमें अल्लाह ताला के नबी के अमल से मुताबकत भी हो और उसको पढ़ने का हमें फ़ायदा भी हो। एक और हमारे यहाँ बहुत ही मारूफ मसला है, और वो क्या है कि जो दुरूद हम पढ़ते हैं या सलाम पढ़ा जाता है तो अल्लाह के नबी सल्लम क्या उसको सुनते हैं, उसका जवाब देते हैं कि नहीं देते। इस किस्म की बातें भी हमारे यहाँ जो अमूमन पेश की जाती हैं। तो आप देखिए कि इसके बारे में एक चीज़ जहन में रखिएगा कि नबी इंसान थे लेकिन इंसानों में आला तरीन इंसान थे। दुनिया की उनकी ज़िंदगी जैसे आम इंसानों से मुख्तलिफ थी ना, थे इंसान खाने पीने में नहीं, उसमें तो बिल्कुल सेम थे, निजी ज़िंदगी सोशल लाइफ में सेम थे, लेकिन अखलाक और आला मर्तबों के अतबार से वो इंसानों में एक बड़ा आला मुकाम रखते थे। बिल्कुल इसी तरह नबी सल्लम के बारे में ये यकीन रखिएगा कि आपकी बरज़खी ज़िंदगी कैसी है। पहली बात है कि आप फौत हो चुके हैं, मान जाइए, दिल ना माने फिर भी मान जाइए, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है सूरह ज़ुमर की आयत 30 में, इन्नक मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन। ए नबी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी मरने वाले हैं और ये काफिर और मुशरिक भी मरेंगे। यानी ये जो आपके मरने की दुआएं कर रहे हैं तो क्या इन्होंने ज़िंदा रहना है? फिर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 144 में आता है, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, और नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय इसके कि बस वो एक रसूल हैं और इनसे पहले भी रसूल गुजर चुके। अफ ए माता ओ कुतिलन कलब तुम अला आकाबिकुम, क्या अगर वो मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो तुम उल्टे पाँव दीन से फिर जाओगे? और कोई फिरता है तो फिर फिरे, अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, और जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनेंगे अल्लाह उसकी जजा देगा। इसमें आप देखिए अल्लाह के नबी की मौत का तस्करा। तीसरी दलील है सूरत अल-अंबिया की आयत नंबर 34, 34 में आता है, वमा जअलना लिबशर मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ इम मित्ता फहुमुल खालिदून। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमेशा की ज़िंदगी तो हमने आपसे पहले भी किसी इंसान के लिए नहीं रखी, अगर आप मर गए तो क्या ये काफिर और मुशरिक हमेशा ज़िंदा रहेंगे? तीन दलाइल काफ़ी हैं कुरान के। क्या अल्लाह के नबी को फौतशुदा कहना आपकी शान में गुस्ताखी है? तो फिर ये गुस्ताखी तो सबसे पहले कुरान में हुई, लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का खुतबा, वो भी दलील में आप नोट कर लें कि मन काना याबुदु मोहम्मदन फ़इन्न मोहम्मदन क़द मात, कि जो मोहम्मद की इबादत करता था या मोहम्मद के लिए सिर्फ अल्लाह की इबादत करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो सोच ले कि अब अल्लाह के नबी पर तो मौत आ गई। ये सही बुखारी की रिवायत है। आप फौत हुए, आपके दस्ते अथर को गुसल दिया गया, कफन पहनाया गया, नमाज जनाजा अदा की गई मुख्तलिफ तरीके से आम उम्मतियों के, और अब मनो मट्टी के नीचे आप दफन हो चुके हैं। कोई ना सोचे कि अल्लाह के नबी से दुनियावी ज़िंदगी के एतबार से अभी भी ज़िंदा है, दुनियावी ज़िंदगी के एतबार से आप फौत हो चुके हैं। रह गई बात कि आपकी कब्र में आप कैसे हैं, कभी सोचा आपने? दिन में आते जब मदीना जाएं या रोज़े पे खड़े हों तो उस वक़्त ये शिद्दत से बात आती है। और बाज़ लोगों ने जो शिर्क गढ़े उन्होंने बहुत अजीबोगरीब बातें आपकी कब्र के बारे में पेश कर दी कि जिसको ज़ुबान पे लाते हुए भी तकलीफ़ होती है, अफसोस होता है। बाज़ ने तो इस हद तक कहा कि अल्लाह के नबी की बीवियाँ आप पर शब्बाशी के लिए पेश की जाती हैं, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे अंबिया कराम की तरह जब दुनिया से गए तो आपकी जो बरज़ख़ की ज़िंदगी थी वो दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा मुकम्मल होती है। आपको अल्लाह ताला वहाँ भी कुछ ऐसी सलाहियतें देते हैं, खूबियाँ दे देते हैं कि जो आम लोगों को नहीं दी जाती। बस आप देखिए कि सूरत बकरा की आयत नंबर 154 में आता है, कि शोहदा को मुर्दा ना कहो, वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउ वलाकिन ला तश्रून, कि तुम उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं मुर्दा ना कहो, वो ऐसे ही जिंदा हैं लेकिन तुम्हें इनका शौर नहीं। अब आप देखिए कि शहीद की ज़िंदगी के बारे में ये कहा, तो क्या फिर शहीद की बेवा आज बेवा नहीं है? क्या शहीद की वरासत नहीं बढ़ती? क्या शहीद के बच्चे जो हैं वो यतीम नहीं हुए? हो गए ना। हाँ, वो वहाँ की ज़िंदगी के अतबार से हैं, और साथ ही कह दिया कि तुम्हें उसका शऊर नहीं है। तो जब शोहदा की ज़िंदगी के बारे में हमें कह दिया गया कि तुम्हें कोई शऊर नहीं है, तो फिर लिहाजा अल्लाह के नबी के बारे में भी हमें शऊर नहीं है। कैसी है, क्या है, गैब के पर्दे में छुपी हुई है। हमें सही रिवायतों से जो बातें पता चलती हैं, इंशाल्लाह दुरूद शरीफ के मसाइल बुक में हम पढ़ेंगे। कितना सुनते हैं, कहाँ की बात सुनते हैं, कोई कब्र पे ही खड़ा होकर दुरूद पढ़े तो सुनते हैं, या अपने घर में सुने, या मिलाद के बाद एंड पे खड़े होकर औरतें पढ़ें फिर सुनते हैं, इंशाल्लाह ताला ये सारे मसाइल आप दुरूद शरीफ के मसाइल किताब में सुन सकते हैं और पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह ताला। और याद रखिए कि जिसने कोई दीन में ऐसा काम किया कि जो अल्लाह के नबी ने नहीं किया, तो वो मुहदस है, और मुहदस बिदत है, और हर बिदत गुमराही, और हर गुमराही जो है वो जहन्नुम में ले जाने वाली है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इतने प्यारे अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। तो हम इस शऊर के साथ कि अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी औलाद, वालदैन और बाकी तमाम लोगों के मुकाबले में मुझसे ज़्यादा मोहब्बत ना करता हो। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। तो हम इस शऊर के साथ इंशाल्लाह किताब को शुरू करेंगे।